आरव माहिरा के साथ दुबई एयरपोर्ट के बाहर था। आज वह अपने किसी इम्पोर्टेंट असाइनमेंट के चलते 6 महीने के लिए उससे दूर जा रही थी। इस बीच आरव माहिरा के साथ ही था। आरव उसे सी ऑफ करने आया था। माहिरा आरव के गले लगकर बोली, आई विल मिस यू सो मच, थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे अपना टाइम दिया। अपना काम अच्छे से करना, अगर टाइम ज़्यादा लग भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो भी करने जा रही हो वो पूरे दिल से करना, आरव माहिरा से अलग होकर बोला। माहिरा ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और कहा, तुम मुझे अच्छे से जानते हो, मैं हर काम डेडिकेटेड होकर करती हूँ, फिर भी तुमने मुझे समझाया, मुझे अच्छा लगा, मुझे तुम्हारा काम के लिए यही डेडिकेशन बहुत अच्छा लगता है। माहिरा की बात के जवाब में आरव मुस्कुराकर रह गया। जाने से पहले उन्होंने एक दूसरे को फिर से हक किया और फिर माहिरा उसे बाय बोलकर वहां से चली गई। उसके जाते ही आरव ने राहत की सांस ली, थैंक गॉड चली गई, गॉड न्यूज़ मैंने इसके साथ इतने दिन कितनी मुश्किल से बिताए हैं, इसकी वजह से मैं आयु से नहीं मिल पाया, ऊपर से दादी अलग से नाराज़ है, जाते ही सबसे पहले आयु से मिलूंगा, नहीं पहले दादी को मनाना होगा वरना वो ज़्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी, आरव ने खुद से बड़बड़ाकर कहा। फिर उसने अपने लिए फ़्लाइट की टिकट बुक करवाई। आरव की फ़्लाइट 1 घंटे डिले थी, इसलिए उसने जाने से पहले कबीर से वहाँ के हालात के बारे में जानने के लिए कॉल किया। कबीर के कॉल रिसीव करते ही आरव ने सबसे पहले यही पूछा, क्या दादी मुझे बहुत ज़्यादा नाराज़ है? अगर नाराज़गी के कोई परसेंटेज होते तो बता सकता था कि जो मैक्सिमम परसेंटेज होते हैं वो उस लेवल तक आपसे नाराज़ है, वैसे दादी ही नहीं आपसे तो मैं भी नाराज़ हूँ, कबीर ने मुंह फुलाकर कहा। और वो किस खुशी में? आरव ने सार्कास्टिक वे में पूछा। उल्टा मुझे तुमसे नाराज़ होना चाहिए, तुम माहिरा को मेरे परमिशन के बिना हाँ कह कैसे सकते हो? मेरे पास अच्छा खासा बिजनेस और दादी का बहाना था, लेकिन तुमने सब संभालने का कहा तो मुझे उसके पास रुकना पड़ा। उसके मन में कोई प्लान चल भी रहा था तो मुझे नहीं बता सकते थे क्या? मेरे पास बताने का ऑप्शन नहीं था, अगर उन्हें पता चल जाता तो आप जानते हैं वो क्या कर सकती है, कबीर ने अपनी मजबूरी जताई। अरे मुँह से नहीं बता सकते थे तो टेक्स्ट तो कर ही सकते थे। लेकिन नहीं, तुम तो चाहते ही हो कि मैं तुम्हारी बॉस के साथ सेटल हो जाऊँ। चलो मेरी फ़्लाइट का टाइम होने वाला है, मेरे आने तक दादी की नाराज़गी दूर करने का उपाय सोच लेना, अपनी बात कहकर आरव ने कॉल कट कर दिया। दूसरी तरफ आयु भी लगभग 1.5 महीने के बाद अपने घर आई थी। उसने अपने घर वालों से एग्ज़ाम कोचिंग लेने का बहाना बनाया था, उसके एग्ज़ाम्स चल भी रहे थे तो उसका बहाना काम आ गया। जैसे ही आयु घर पहुंची, वो दौड़कर सिमरन के गले लग गई। मैंने आपको बहुत मिस किया भाभी, आयु सिमरन से अलग होकर बोली। सिमरन ने उसकी बात का मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहा, हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया, अब कहीं मत जाना। सिमरन से मिलने के बाद आयु की नज़र ताराजी पर पड़ी जो उन्हें देख रही थी। आयु कुछ कहती उससे पहले तारा ने खुद ही कहा, लगता है इतने दिनों में तुमने सिर्फ अपनी भाभी को ही मिस किया था। ऐसा नहीं है मॉम, बोलते हुए आयु उनके भी गले लग गई। आयु इतने दिनों बाद अपने घर पर आकर काफ़ी खुश थी। ट्रेनिंग के बीच जब भी रोहन ने आयु को फ्री किया था, इस बीच वो अपने घर आने के बजाय मंथन और साक्षी से मिलने जाती थी, तो कभी कथा रायान से भी। अच्छा बातें बहुत हो गई, कल से तुम्हारे एग्जाम्स है, आई नो तुमने तैयारी कर ली होगी, बट एज ए स्ट्रिक्ट मॉम यही कहूंगी कि प्रिपेयर रहना, तारा ने हल्की सख्त आवाज में कहा। उनकी बात सुनकर आयु हंसकर बोली, आपने तो बचपन की याद दिला दी, अनु हर चीज में बेस्ट थी पर क्लास की टॉपर तो मैं ही थी। अचानक आयु के मुंह अनु का जिक्र हुआ तो उन तीनों के चेहरे उतर गए। तारा ने बात को संभालते हुए कहा, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू माई टॉपर, बोलते हुए उन्होंने आयु के फॉरहेड पर हल्के से किस किया। उनकी बात पर हामी भर के आयु अंदर चली गई। तारा ने ज्यादा नोटिस नहीं किया, लेकिन सिमरन को आयु का बर्ताव बदला हुआ लग रहा था। सिमरन ने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, स्ट्रेंज, आयु के मुंह से अनु का नाम निकला और उसने काफी नॉर्मल रिएक्ट किया, आज से पहले ऐसा जब भी हुआ वो बच्चों की तरह रोने लगती थी, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, हो सकता है टाइम बीतने के साथ आयु ने सच को एक्सेप्ट कर लिया हो कि अनु अब हमारे बीच वापस नहीं आ सकती। सिमरन ने आयु के बर्ताव को नोटिस तो किया था लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो वहीं आयु अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी खुद से बातें कर रही थी। हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब तुम वापस नहीं आओगी, मौत एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता, मैंने इस सच को एक्सेप्ट कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। आरव खुराना, तुमने बहुत से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है और तुम्हें उन सब का जवाब देना होगा, मेरा पहला काम तुमसे वो चिप हासिल करना है, उसके बाद तुम्हारे मुँह से ये कबूल करवाना कि तुमने ही मेरी बहन को धक्का दिया था। बी रेडी आरव खुराना, मैं वापस आ गई हूँ। आयु की आंखों में आरव के लिए नफरत थी और दिल में उससे बदला लेने का सख्त जज्बा। दूसरी तरफ आरव मुंबई वापस आ चुका था, वो पहले घर जाने के बजाय खुराना इंडस्ट्रीज गया और वहां से उसने रात को डिनर के टाइम घर जाना तय किया। रात को डाइनिंग टेबल पर गौरवी जी कबीर के साथ थी, कबीर ने उन्हें अब तक इस बारे में बताया नहीं था, उसने बस डिनर के लिए गौरवी जी को रोक कर रख रखा था। क्या हुआ है कबीर, हम पिछले 15 मिनट से ऐसे ही बैठे हैं, क्या कोई आने वाला है या कोई स्पेशल मुहूर्त है खाना खाने का? गौरवी जी को भूख लगी थी इसलिए वो चिढ़कर बोली, तुम्हें जैसे वेट करना है करो, मुझे भूख लगी है मैं शुरू कर रही हूँ। रुकिए दादी, बस 5 मिनट और, कबीर ने प्लीडिंग वे में कहा। पिछले आधे घंटे से 5 मिनट 5 मिनट लगा रखा है, पहले टेबल पर आने नहीं दिया और अब यहाँ आ गई हूँ तो खाने नहीं दे रहे। अरे ऐसा कौन सा कहीं का बादशाह यहाँ पर आ रहा है जिसके इंतजार में तुम मुझे भूखा रख रहे हो, गौरवी जी ने गुस्से में कहा। गौरवी जी बोल रही थी तभी कबीर के कानों में गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई थी। वो समझ गया था कि आरव वापस आ गया है। हॉर्न की आवाज़ सुनते ही गौरवी जी जल्दी से बोली, अरे ये तो सच में कोई आया है, कौन है? कबीर को गौरवी जी की बात का जवाब देने का मौका नहीं मिला, वो खुद पहले ही बोल पड़ी, कहीं आरव तो वापस नहीं आया है? कबीर ने बिना कुछ कहे हाँ में पलके झपकाई। गौरवी जी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उठकर जाने लगी। दादी प्लीज रुके तो सही एक बार, बोलते हुए कबीर रुक गया। उसे लगा गौरवी जी अपने कमरे में जा रही हैं, लेकिन वो ऊपर जाने के बजाय बाहर की तरफ जाने लगी। आरव गाड़ी पार्क करके बाहर निकला ही था कि तभी उसे बाहर गौरवी जी दिखाई दी। वो तेज कदमों से चलकर गौरवी जी के पास आया और उनके गले लग गया। अब लग रहा है मुझे मेरा सुकून वापस मिल गया, आरव ने आंखें बंद करके जवाब दिया। गौरवी जी ने भी कुछ पल के लिए अपनी नाराजगी भूलकर आरव की पीठ को सहलाया। जब तू जानता है तेरा सुकून मेरी गोद में ही है तो फिर छोड़कर क्यों चला जाता है बार बार? अगर वो तुझे इतनी पसंद है तो उसे हमेशा के लिए यहाँ ले आ, गौरवी जी ने नमाखा से कहा। अच्छा, लेकिन आपने तो कहा था वो आपको पसंद नहीं है, आरव ने गौरवी जी को परेशान करने के लिए कहा।
हाँ तो तू भी तो कहता रहता है तुझे वो डॉक्टर अच्छी लगती है। अरे उसके लिए तो तू मेरा हॉस्पिटल तक मुझसे छीनने के लिए तैयार हो गया। एक साथ दो लड़कियों को डेट कर रहा है, ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे मैंने तुझे। बोलते हुए गौरवी जी आरव से अलग हो गई। फिर उन्होंने आरव की तरफ घूर कर देखा और कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की, चल जा वहीं उसी के पास। अरे दादी आप तो टिपिकल सास बन गई। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं उससे बस काम के सिलसिले में ही मिला था, आरव ने अपनी सफाई की पेश की और फिर अंदर जाने लगा। गौरवी जी उसके पीछे तेज कदमों से चलकर गईं और कहा, मैं तुझसे नाराज हूँ। आप मुझसे नाराज नहीं है दादी, अगर नाराज होती तो इस तरह दौड़कर मुझसे मिलने नहीं आती, आरव ने लापरवाही से जवाब दिया और फिर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। वह बैठते ही आरव की नज़र कबीर पर पड़ी तो उसने कबीर से कहा, और बताओ क्या हाल है? आई होप तुमने मेरे पीछे से बिजनेस को अच्छे से संभाला होगा। बस जो है आपके सामने है, आप तो दिन में ऑफिस में ही थे, इतने दिनों की रिपोर्ट पढ़ ली होगी, फिर मुझे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? कबीर ने सिर हिलाकर कहा। गौरवी जी को पहले पता नहीं था कि आरव दिन में ही मुंबई आ चुका था। जैसे ही उन्होंने कबीर के मुंह से सुना, वो आरव को घूरते हुए देखने लगी। उन्होंने गुस्से में कहा, अच्छा तो तुम दिन में ही यहाँ आ गए थे, जब पूरे दिन ही बाहर थे तो अब रात को घर आने की क्या जरूरत थी? चलो निकलो मेरे घर से बाहर। गौरवी जी के गुस्सा करने पर आरव ने कबीर की तरफ घूर कर देखा और कहा, तुम अपनी जुबान पर काबू नहीं रख सकते क्या? फिर आरव ने गौरवी जी की तरफ देखकर कहा, देखिए दादी मेरे भी काम होते हैं और वो मुझे निपटाने होते हैं, आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि मैं अपने काम को लेकर कितना डेडिकेटेड हूँ, कि सबसे पहले खुराना इंडस्ट्रीज गया, मिस तो मैं आयु को भी बात कर रहा था, पर उसके पास जाने की बजाय पहले आपके पास आया हूँ क्योंकि आप मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अनजाने में आरव के मुंह से आयु का नाम निकल गया। अपनी बात खत्म होते ही आरव को एहसास हुआ तो उसने दोनों हाथों से अपने मुंह को ढक लिया। वहीं अब कबीर और गौरवी जी उस पर हंस रहे थे।